پورا بنا رہتا ہے آدھا آدھا بال کھلا رہتا ہے آدھا دھیرا بنا رہتا ہے
بال نہیں کہو شنکر جی کی جٹائیں کہو
جٹائیں
جان جٹاؤں میں مستک میں چندرما بھی وراجمان ہے وہ چندرما سمپورن ہے یا اپورن ہے تو کس لیے وراجمان ہے پڑھائی پڑھنے کے لیے وراجمان ہے یہ ماتا کو یہ بات بدھی میں نہیں آئی کیوں بیٹھا ہوا ہے سر پہ سر پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے پڑھائی پڑھنے کے لیے چھوڑوں گا نہیں پوری پڑھائی پڑھ کے چھوڑوں گا اور پھر گنگا بھی وراجمان ہے آدھی جٹائیں کھلی ہوئی ہیں اور جن جٹاؤں میں گنگا بیٹھی ہوئی ہے وہ جٹائیں بند ہی ہوئی ہے اس کا مطلب ابھی گنگا نیچے نہیں آئی ہے مستک میں ہی گمڑ رہی ہے پھر ایسے بھی نہیں کہیں گے کہ گیان کی ساری باتیں کھلی نہیں ہیں بہت کچھ گیان کی باتیں بہت کچھ گیان کے راز کھل گئے ہیں تو جٹائیں کھلی ہوئی بھی ہیں لیکن سب کچھ پہلے سے بتا دیں گے تو پھر انت میں کیا بتاویں گے اس لیے گنگا کا راز چھپا کے رکھا ہوا ہے بولتے ہیں انت میں نکلی ہیں گیان گنگائیں تو چھپا رستم بعد میں کھلے کہتے ہیں گنگا تو سب سے اوپر وراجمان ہے پاروتی بھی نیچے ہے گنیش بھی نیچے ہے ناگ بلائیں بھی نیچے ہیں چندرما بھی نیچے ہے اور گنگا تو سرو پر ہے یہ گنگا کہاں سے آئی ہوگی گنگا جہاں سے آئی ہوگی وہاں استھول میں بھی گنگا بہتی ہوگی یا نہیں بہتی ہوگی بہتی ہوگی اور جہاں گنگا آتی ہے جہاں سے وہاں ضرور بھگوان نے گیان پہلے پہلے سنایا ہوگا کتنا سنایا ہوگا تھوڑا یا زیادہ اتنا ستو پردھان گیان سنایا کہ کان پور گئے تو آج مرلی میں کیا بولا اچھے اچھے پرشارتھی کہاں پرشارتھ کر رہے ہیں کانپور میں تو گنگا کی گنتی ان میں ہوگی یا نہیں ہوگی ضرور ہوگی ایک ابھیکت وانی میں بولا بھی ہے گنگا کہاں سے نکلی الہ آباد سے نکلی یا کانپور سے نکلی کانپور کا نام کیوں لے دیا ہردوار فرق آباد کا نام لے دیتے وہ نہیں لیا الہ آباد تو پھر بھی ٹھیک ہے بھکتی مارگ میں تینوں ندیوں کا سنگم گایا ہوا ہے کانپور میں تو سنگم بھی نہیں ہے پھر بھی کانپور کا نام لے دیا تو ضرور کوئی راز کی بات ہے اور
में सुने थे जितने प्रकार की भक्तियाँ होती है नौभा भक्ति में, नौ प्रकार की यादें भी होती
है,
नौ प्रकार की यादें भी होती है बाप याद करने की
आधे
यादें
याद करने आदे,
के जितने
भक्ति मार्ग में होती है भक्ति और ज्ञान मार्ग में भक्ति नहीं है
जी।
भक्ति माने भागते रहो इधर उधर 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 चारों तरफ भागते रहो, और ज्ञान मार्ग में
एक तरफ
एक टिक हो जाओ। तो एक की याद में टिक गए तो याद है, बुद्धि को भाग दौड़ करने में याद नहीं है, बुद्धि टिकेगी ही नहीं, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो सर्वव्यापी बनाई दिया, तो बुद्धि चारों तरफ भागेगी या एक जगह टिकेगी, चारों तरफ भागती रहती। तो भक्ति मार्ग में है भक्ति भागते रहो, और ज्ञान मार्ग में है याद, एक जगह टिक जाओ। हाँ तो
एक नौ प्रकार की जो भक्ति बताई गई है ये आगे ये भी कहा गया है कि जितने प्रकार की भक्ति होती है उतने प्रकार की यादें भी होती है।
हाँ लेकिन जो यादें होंगी और जो भक्ति होंगी
तो
वो परसेंटेज में एक जैसी होंगी या नंबर वार होंगी, नंबर वार होंगी, तो उनमें एक प्रकार की याद जरूर सबसे तीखी होगी। इसलिए भक्ति मार्ग में बोला है प्रथम भगत संतन कर संगा, पहली पहले नंबर की भक्ति कौन है, संत का संग, और संत माने सत्य, सत्य कैसे बनता है, सत्य से बनता है, और इस दुनिया में सब सब झूठे, एक भी सच्चा नहीं। तो सत्य कहां से आए और संत कहां से आए है, जब बाप आए तो संत भी आए, वो संत कौन हुए, ऊंचे थे ऊंचे, उनका नाम है त्रिमूर्ति शिव, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ये है प्रथम भगत संतन कर संगा। चाहे बेसिक में ब्रह्मा के रूप में सत्य का संग करो, भले चंद्रवंशी भी बनेंगे तो भी गुंजाइश है लक्ष्मी के रूप में पुरुषार्थ करके सूर्यवंशी बनने का, विष्णुवंशी तो बन ही जाएंगे ब्रह्मा से विष्णु, और शंकर तो है ही देव देव महादेव। तो भक्ति मार्ग में भी बल नौ प्रकार की भक्ति है, नौ प्रकार के ब्राह्मण गाए हुए हैं, परंतु सब एक ही कुरी के ब्राह्मण हैं या नंबर वार है, नंबर वार ब्राह्मण है, ऊंचते ऊंचे ब्राह्मण भी कोई होगी कुरी, ऐसे ही भक्ति में जैसे नौ प्रकार हैं, याद भी नौ प्रकार की है, नौ धर्म है, भगवान से प्राप्ति करने वाले नंबर वार, तो नौ धर्मों के मुखिया भी हैं, हर धर्म का एक प्रजापिता है, धर्म पिता है, वो सब नंबर वार, वो अपने अपने प्रकार की याद सिखाते हैं। जब नौ प्रजापिता हैं अपने अपने धर्म के, तो सब अपने को बाप साबित करेंगे या नहीं करेंगे, करते हैं, तो याद नौ प्रकार की हो जाती है। अब जो जिस वंश का होगा वो उस स्टेज को प्राप्त कर लेगा और
उसके जो मतलब तीन प्रकार की यादें तो बता दी गई थी कैसे तीन चार, लेकिन और यादें नहीं बताई गई।
बता तो दिया नौ धर्म पिताएं हैं, सूर्य वंश चंद्रवंश तो हो गया जी। क्या सूर्यवंश हो गया चंद्रवंश हो गया। चंद्रवंश में एडिशन होती है सूर्यवंश की तो देवता धर्म बनता है, बाकी रहा ब्रह्मा। ब्रह्मा से नौ प्रकार के ब्राह्मण हुए, उनमें अव्वल नंबर तो विष्णु हो गया जिसे बनता देवी देवता सनातन धर्म। बाकी रह गए सात, जो सात धर्म पिताए हैं वो अपने को साबित करते हैं कि हम ही ऊंचे ऊंचे हैं, तो उनके फॉलोअर्स वैसे ही याद में लटक जाते हैं, नौ प्रकार की याद हो जाती है। और
बाबा एक चौपाई है, मास दिवस का दिवस भयो मरम न जानत होए, रथ समेत रवि थाटो निशा कमल विधि होए। इस समय पुरुषार्थ जीवन में राम की आत्मा कौन सा ऐसा पुरुषार्थ करती है जिसके लिए चौपाई कही गई और मास का अर्थ क्या है?
बाबा की याद में कोई एक सेकंड भी टिकता है अभी बिचारी याद में तो वो एक सेकंड लंबे टाइम का सूचक है या थोड़े टाइम का सूचक है? लंबे टाइम का सूचक हो जाता है। उस हिसाब से भक्ति मार्ग में महिमा कर दी है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। जो कह दिया है कि देवताओं का एक दिन मनुष्यों के इतने इतने वर्षों के बराबर, इतने जन्म के बराबर होता है, दिन तो 24 घंटे का ही होता है, वर्ष ऐसे ही होंगे, समय की गिनती में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन मान्यताएं अलग अलग हो गई है। और जगत का नाथ है कौन? और प्रजापिता में कौन प्रवेश करता है? शिव बाप। अब जगन्नाथ तो भगवान नहीं है, जगन्नाथ का शरीर वो तो रथ है, गाली खाने के काम जन्म जन्मांतर राजा बन करके जगन्नाथ ने किए होंगे या शिव बाप ने किए होंगे? जगन्नाथ ने गाली खाने के काम किए, ऊंच पदवी मिल जाती है तो दिमाग खराब हो जाता है। शास्त्रों में भी आया है प्रजापति को ऊंच पद मिल गया तो भगवान को भी गाली देने लग पड़ा। प्रभुता पाई काहे मदनाई, तो दुनिया वालों ने ज्यादा पाप कर्म किए हैं या भारत के राजाओं ने ज्यादा पाप कर्म किए हैं? भारत के राजाओं ने अहंकार में आकर के बहुत पाप किए, और उन राजाओं में भी कोई बड़ा से बड़ा राजा होगा या नहीं? कौन है? प्रजापिता। तो वो तो बड़े से बड़े पापी है। जब रामायण लिखने का टाइम आया, तुलसीदास ने लिख मारा, अपने मुंह से ही बोल दिया, मैं पतितनों को राजा। तो जब इतने पाप करेगा तो गालियां कौन खाएगा? शिव बाप गाली खाते हैं क्या? हैं? शिव बाबा खाते हैं या शिव बाप खाते हैं? शिव बाबा है? गाली कौन खाता है, देहधारी या निराकारी? देहधारी गालियां खाता है। गालियां भी खाओ, पत्थर भी मारो, तब रथा आगे बढ़ेगा, नहीं तो आराम से बैठ जाएगा। और
अब उस समय की पोजीशन में तो जगन्नाथ पुरी के जो है उनके हाथ पैर सबको जो है तो वो आपसे अलग हो जाती, निराकारी स्टेज हो जाती है, तो फिर गाली कौन देती
है? गाली कौन देते होंगे? अरे गालियां सहन भी कौन करेगा, हाथापाई नहीं करने लग पड़ेगा? अरे देह भान होगा, हाथ पांव का भान होगा तो हाथ थप्पड़ मारेगा कि नहीं? अभी तुम्हारे मुंह पे कोई ग्लानी करता है तो गुस्सा आता है कि नहीं आता है? और उनको नहीं आता है, नहीं आता है, आंखें लाल पीली नहीं होती हैं, इसका मतलब निराकारी स्टेज है। सुनते हुए न सुनो, देखते हुए न देखो, हाथ पांव होते हुए भी जैसे नहीं है।
ब्रह्मा शंकर के मस्तिष्क में बैठ करके पढ़ाई पढ़ते हैं।
ब्रह्मा नहीं, चंद्रमा।
अव्यक्त वाणी ब्रह्मा द्वारा ही चलाई गई है। अव्यक्त वाणी में और मुरली की वाणी में कहीं कट नहीं होता। जो पढ़ाई पढ़ रहा हो, जो पढ़ाई पढ़ रहा हो वो इतना पूर्ण कैसे हो सकता है कि अव्यक्त वाणी और मुरली में कोई बात कट नहीं होती
है?
अव्यक्त वाणी और साकार वाणी है। ब्रह्मा की सो तो पढ़ाई पड़ती है।
साकार वाणी कौन सी? जो ब्रह्मा के मुख से चलाई गई, वो
जो शिव ने ब्रह्मा मुख से वाणी चलाई।
हाँ,
साकार वाणी हुई।
हाँ,
और अभी वर्तमान में जो गुलजार दास जी अव्यक्त वाणी चलाई।
हाँ,
ब्रह्मा की सो चला रही है।
हाँ,
ये कह रहे हैं जो तू पढ़ाई पढ़ने वाला है।
हाँ,
तो वाणी को कट नहीं करता, कैसे हो सकता है?
कट नहीं कर सके,
क्रास नहीं करता साकार वाणी को।
क्यों क्रास करेगा? सबसे ज्यादा सुना किसने है? हैं? ब्रह्मा ने तो सुना है। तो ब्रह्मा ने जिसने सबसे जास्ती सुना है और सबसे पहले सुना है, वो अपनी वाणी को, अपने मुख से बोली हुई बात को क्रास करेगा? कैसे करेगा? और ब्रह्मा ब्राह्मण बच्चों के बीच में सबसे तीखा पुरुषार्थी था या ढीला पुरुषार्थी था? तो जो वाक्य बोलेगा वो एक्यूरेटली तो बोलेगा। अरे आज के कवि जो हुए हैं, पुराने जो कवि हुए हैं, उन्होंने शास्त्रों में जो कविताएं लिख दी हैं, वो कविताएं भी सच्ची साबित हो जाती हैं। फिल्मी जो कलाकार हैं, गीत बनाते हैं, पुराने पुराने गीत, वो सारे ज्ञान में लागू होते हैं। वो गीत जब बनाने वाले थे तो क्या वो रहस्य समझते थे? उस एकाग्रता की स्थिति में स्थित होकर के वो गीत बनाए हैं। लवलीन हो करके कि उनमें सच्चाई भरी हुई है। ऐसे ब्रह्मा की सोल भी गुलजार दादी में आती है तो आंखें कैसी दिखाई पड़ती हैं? अव्यक्त दिखाई पड़ती हैं या साकारी दिखाई पड़ती हैं? है अव्यक्त आंख दिखाई पड़ती है। तो ऊंची स्टेज है या नीची स्टेज है? ऐसी ऊंची स्टेज में जो वाणी निकाली जाएगी वो झूठी साबित हो सकती है क्या? है नहीं। साकार वाणी के भी अनुकूल होगी और जो क्लेरिफिकेशन की टीचर की वाणी है उसके अनुकूल भी होगी, क्योंकि क्लेरिफिकेशन भी लेने वाला वही है। और शिव बाप की वाणी सुनने वाला भी वही है। और
द्वापर में छोटे विनाश के समय पर धरती से चंद्रमा उपग्रह अलग हो जाता है।
हाँ जी,
अलग होने पर वो अपने आकर्षण से भी दूर चला जाता है।
अपने आकर्षण से?
पृथ्वी के आकर्षण से दूर चला जाता है।
आकर्षण से दूर कहाँ चला जाता है? पृथ्वी के आसपास ही तो घूमता है। आकर्षण में रहता है तभी तो घूमता है।
वो पृथ्वी
बच्चा जो है वो माँ के आकर्षण से कभी दूर हो जाएगा क्या? वो तो बच्चा है, जगदम्बा का बच्चा है, वो पृथ्वी माता का बच्चा है, वो तो सदैव आकर्षण में आकर्षित रहेगा।
हिरण्य के समय में विनाश के टाइम पर आकर्षण टूटने पर सभी सितारे और चंद्रमा फिर पृथ्वी मिल जाते हैं, तो फिर आकर्षण कैसे
काबा टूटता है? एटम बम फटते हैं तो पृथ्वी सारी डोलायमान हो जाती है। सारे ही ग्रह सितारे डोलायमान हो जाते हैं। एक बृहस्पति को छोड़ करके 9 ग्रहों में जो सबसे पावरफुल है वृक्षपति, बीज कहो, प्रजापिता कहो, वो ही बचेगा और पृथ्वी बचेगी। मात पिता के अलावा और कोई ग्रह उपग्रह नहीं बचेगा। सब अपने अस्तित्व को मर्ज कर देंगे। इसमें बाप में प्रकृति प्रकृतिपति में समाई हुई है। प्रकृतिपति प्रकृति के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लेता है। तो जैसे सागर में बूंद समा जाती है ऐसे सागर एक हो जाता है। और
जब चंद्रमा हिम महासागर से निकल करके जड़ में पृथक होती है तो ऊपर की हो जाती है, नीचे क्यों नहीं जाती?
नीचे ऊपर क्या होता है?
जड़ यादगार यहाँ धरती और चांद है, तो वो जो धरती का अंश टूट करके उपग्रह महासागर से निकल करके जब अलग होता है द्वापर में, तो वो ऊपर को ही हो जाता है, नीचे क्यों नहीं जाता?
ऊपर क्यों नीचे कुछ नहीं होता है। पृथ्वी बीच में गोला है और चंद्रमा नीचे ऊपर चारों तरफ चक्कर लगाता है, ऊपर नीचे क्या होता है? और हाँ जी, کو
ہمارے چتر جو ہے کوئی چرتر کی یادگار بنتی ہے.
ہاں جی
تو بتایا گیا کہ میں نے شنکر ہے برہما اور وشنو کے گاڑی نہیں سکھائی جاتی. برہما اور شنکر اور وشنو کے گاڑی مجھے نہیں سکھائی جاتی اور برہما کو گاڑی مجھے سکھائی جاتی ہے.
ہاں
تو ایک چتر میں ہم نے دیکھا ہے
ہاں وہ تمو پردھان برہما پرویش ہے اس کی داڑھی مونچھ تم نے دیکھ لی ہوگی تو تم کو شنکا پیدا ہو گئی ہے برہما کی داڑھی ہے یا شنکر کی ہے. شنکر سوکشم وطن واسی فرشتہ ہے یا ساکار وطن واسی ہے؟ کہاں کا واسی ہے؟ من بدھی سے سوکھم وطن واسی ہے فرشتہ ہے. فرشتے پوتر ہوتے ہیں یا پوتر ہوتے ہیں؟ پوتر ہوتے ہیں. یہ تو باپ کا پیار ہے جو کشت بچے کو چندرما کے روپ میں سر پر دھارن کرتا ہے. اس لیے اس کی غلطیوں کو بھی بڑے سے بڑی غلطیوں کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے. دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ داڑھی شنکر کو ہے. وہ شنکر کی داڑھی نہیں ہے. شنکر کی داڑھی کی لاج کی بات نہیں ہے. اس کی داڑھی کی لاج کی بات ہے. برہما کی داڑھی کی بات ہے. اور
بابا نے بتایا ہمارے سیوا کو بچے کرتے ہو سیوا کا بابا نے یہ بتایا ہے کہ آتما کوئی بھی سیوا نہیں کر سکتا
ہے.
ارے پتت آتما جو ہے تو کوئی کسی کی سیوا نہیں کر سکتی ہے.
اس کا مطلب شیو باپ تو سیوا کرتے ہیں. شیو باپ سیوا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں. لیکن پھل کس کو ملتا ہے؟ دیہداری کو ملتا ہے یا نراکاری کو ملتا ہے؟ محنت کس کو انبھو ہوتی ہے؟ دیہداری. گالیاں کس کو لگتی ہیں؟ کس کو سہن کرنی پڑتی ہیں؟ دیہداری. تو جو کرے سو پاوے. اور یہ تو تمہارا کہنا ہے نا. مرلی میں بابا کیا کہتے ہیں اور تم کیا کہتے ہو؟
جان جائے بابا نہیں معلوم.
تو مرلی میں تو بابا نے یہ کہا کہ سارا جیون جو یاد کیا جاتا ہے انتم گھڑی میں وہی یاد آ جاتا ہے. یہ تمہاری اپنی کلپنا ہے, اپنی منمت ہے. منمت ستیاناش کرتی ہے اور شریمت ہے شریمت سے سدگتی منوشی مت سے اپنی مت نہ چلاؤ. اور
بابا
ہے
ایک جو بھائی ہے
बोलो बोलो
नहीं वो उस मिशन कर रहा था और ये दिख रहे थे कार में वो भी करता
है
ये कैसे है
ये कैसे है
अरे तुम जो कुछ करोगे सो तुम ही पाओगे दूसरा कोई कैसे पाएगा है जो करेगा वो ही पाएगा कि दूसरा कोई पाएगा तो फिर इसमें नई बात क्या है और उन्होंने पूछा है जहां देखी तबा बारात वहीं बिताई सारी रात वेद में ये बात किसके ऊपर लागू होती है है ये बात 100% किसके ऊपर लागू होती है आर्य समाजियों के ऊपर लागू होती है द्वापर युग से जब और धर्मों का आना शुरू होता है तो वो आर्य समाजी आत्माएं जो नया धर्म आता है उसी तरफ मुड़ जाती है फिर अगला धर्म जो आएगा फिर उस तरफ मुड़ जाएगी उनका कोई धर्म ईमान नहीं उनकी वजह से ही मुसलमान लोग हिंदुओं को काफिर कह देते हैं कहां कहां किस किस धर्म में फिरते रहते हैं अपना कोई नियम कानून नहीं और बाबा राम बाप के रूप में पक्का अहमदाबादी कहते हैं सबको झुकाने के बाद झुकते हैं तो बाबा किसके आगे झुकेगा है बोलो कोई के पास जवाब नहीं है अरे भगवान किसके आगे झुक जाता है है अरे बच्चे भी तो सत्यानाशी भी तो है सबके आगे झुक जाता है तुम सब भक्तियां हो तुम सब सीताएं हो तो सबके सामने झुकता है कि नंबर वार हैं कोई अव्वल नंबर है या नहीं है, है? तो अव्वल नंबर के सामने झुकेगा या सबके सामने झुकेगा अव्वल नंबर के सामने झुक जाते हैं भक्ति मार्ग में कहते हैं भक्त भगवान को बहुत प्यारे होते हैं तुम सब भक्तियां हो भक्तियों में भी कोई अव्वल नंबर भक्ति है उसके लिए अव्यक्त बाप दादा ने डायरेक्शन भी दिया है क्या करो है विजय माला का आवाहन करो क्या माला में सब मड़कों का आवाहन करेंगे शहद की मक्खियों का आवाहन करने के लिए क्या करते हैं है? रानी मक्खी को पकड़ लेते हैं तो रानी मक्खी का आवाहन करे आवाहन करने वाला ऊंचा या जिसका आवाहन किया जा रहा है वो ऊंचा है आवाहन किया जाए वो ऊंचा हो गया पवित्रता के आगे सबको माथा झुकाना पड़े आखिर इन माता को क्या बनाना पड़े, माता को गुरु बनाना पड़े। तो बाप मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं तो बाप का पाठ बजाते हैं, और ब्रह्मा में प्रवेश करके माँ का पाठ बजाते हैं। लेकिन ओम राधा में भी प्रवेश करके जो आने वाली प्योरिटी की देवी है, छोटी माँ, तो क्या उनमें भी शोभा प्रवेश कर सकते हैं या नहीं? प्रश्न समझ में आया है? पहली बात, शिव बाप बाप के रूप में एक व्यापी है या सर्वव्यापी है? तो औरों में तो बाप के रूप में प्रवेश होने की बात ही नहीं। हाँ, माँ के रूप में ब्रह्मा में प्रवेश किया, बड़ी माँ, तो बड़ी माँ का पार्ट हो गया। घर परिवार में बड़ी माँ दादी माँ भी होती है, तो और भी कोई माँ होती है, है? अरे छोटी माँ भी तो होती है, छोटी माँ भी होती है। तो जैसे बड़ी माँ में प्रवेश करते हैं, ऐसे छोटी माँ में प्रवेश नहीं हो सकता? छोटी माँ के रूप में हो सकता है, तो छोटी माँ भी प्रवेश करते हैं। नाम तो ब्रह्मा ही पड़ेगा, चाहे माँ के रूप में बड़ी माँ हो या छोटी माँ हो, बाप तो नहीं कहा जाएगा। बाप के रूप में सिर्फ एक व्यापी है, अनेक व्यापी नहीं हो सकता। बाबा ने कोई मुरली में कहा बैंक में पैसा नहीं रखना है? कहा है?
नहीं कहा।
किसी ने मन मत जोड़ दी, अब फेल हो जाएंगी, तब हो जाएंगी, उससे पहले ही अपना निकाल के खर्च कर लो ना, ईश्वरीय सेवा में लगा दो। या अभी घर में रख करके लुटेरों को लुटवा दें, है? प्रश्न आया है, बाबा के बच्चों के नाम से बैंक में जो पैसा जमा है, लेकिन वे पैसे भी तो अंत में लूट लिए जावेंगे, व बाबा ने कहा है बैंक में पैसा नहीं रखना है, तो बाबा क्यों रखते हैं? अब बाबा ने तो ये बोला हुआ है कि तुम इस जन्म में जो कुछ बाबा को देते हो वो बाबा को दिया हुआ इस जन्म में ही बाबा वापस कर देगा, और 21 जन्मों के लिए तुम्हें और भी देगा, ब्याज में देगा। तो बाबा अगर रखेगा नहीं तो तुम्हें वापस कहां से देगा? बाबा परमधाम ले जावेगा क्या? है नहीं? अच्छा बाबा अपने रथ को दे जावेगा क्या? रथ तुम्हारे मुकाबले ज्यादा पुरुषार्थी है, अपनी कमाई पर रहता है या दूसरों की कमाई पर निर्भर रहता है? तो न परमधाम ले जावेगा, न रथ को दे जावेगा, और रथ को भी डायरेक्शन मिला हुआ है जो कुछ भी यज्ञ की प्रॉपर्टी है वो किसके नाम कर दो? है कन्या माताओं के नाम कर दो। तो कन्या माताओं के नाम जब किया जाएगा तो उसको सुरक्षित नहीं रखना है, है? सुरक्षित तो रखना पड़ेगा, आगे चल के अकाल पड़ेगा जोर से। जिनके पास हजारों हजार की नोटों की गड्डियां पड़ी हुई हैं, वो गड्डियां काम नहीं आवेंगी, उनको रोटी का निवाला नहीं मिलेगा। अगर खरीद करके अपने गोदाम में रखा होगा तो भी लूट ले जावेंगे कि छोड़ देंगे, लूट ले जावेंगे। उनको टुकड़ा नसीब नहीं होगा, लेकिन बाबा के बच्चों को फिर भी जो साधारण भोजन अभी मिलता है तब भी मिलेगा। तो सुरक्षित करके नहीं रखा जाएगा, तो ऐसी मुसीबत के टाइम पर बच्चे कहां से खावेंगे? हैं? लिखने वाले का मतलब यह है बैंक में न रखो, हमको दे दो। प्रजापिता में शिव बाप की प्रवेशता 24 घंटे रहती है कि कभी कभी प्रजापिता से अलग हो जाते हैं। बताओ भाई, अच्छा मुरली में क्या डायरेक्शन दिया है तुम क्या समझो? है तुम सदैव यही समझो कि शिव बाबा इसमें मौजूद है तो तुमको फायदा ही फायदा है। अगर ये मानेंगे कि थोड़े समय के लिए आता है, हर समय नहीं रहता है, तो क्या सर्वव्यापी होने के लिए चला जाता है? है? नहीं? इसलिए अपनी मनमत चलाने से नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बाबा कहते हैं श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय समझो। क्या श्रीमत के बरखिलाफ अपनी मनमत पर कोई धारणा बना ली और उसे दूसरों को सुनाना शुरू कर दिया कि बाबा 24 घंटे थोड़े ही रहेगा, تو نقصان ہو جائے گا. پہلے کے راجائیں جب یدھ میں جاتے تھے اور یدھ کرتے کرتے اپنی سینا کے ساتھ ویرگتی کو پراپت ہو جاتے تھے اور رانیوں کو پتا چلتا تھا تو رانیاں بھی جلتی ہوئی آگ میں کود کر سویم کو بسم کر دیتی تھی. تو بابا سنگم یگ میں اس کی شوٹنگ کیسے ہوتی ہے؟ ارے با استھول یدھ ہوتا ہے اور یا سوکشم مایا کا یدھ ہے, وہاں ہنسک یدھ ہوتا ہے اور یہاں اہنسک یدھ ہے. تو اہنسک یدھ میں شریر کو جلاویں گے یا آتما کے دیوان کو جلاویں گے؟ آتما کے دیوان کو جلانے کی بات ہے. جو بولا تم پاوک میں کرو نواسا, پاوک مانے اگنی, کون سی اگنی؟ یوگ اگنی میں نواس کرو, نرنتر یوگ اگنی میں نواس کرنا مانا دیوان کو بسم کر دینا. شوٹنگ ہو گئی
اس میں ہوئی تھی بابا,
ہے
کیا سیتا جی کی ایک پریچا رامن کے واقع آنے پر سیتا کی ایک پریچا ہوئی تو کون سی
کون سی سیتا کی پریچا ہوئی؟ یہ کہو نمبر دو کی سیتا کی پریچا ہوئی یا نمبر ون کی ہوئی؟ نمبر دو کی ہوئی. جو نمبر دو کے کام کرتے ہیں ان کی پریچا ہوتی ہے. جو سریمت کی لیکا کو توڑنے والی سیتا تھی اس کی پریچا ہوتی ہے. جو سریمت کی لیکا کو کبھی توڑتی ہی نہیں اس کی پریچا کی بات ہے ہی نہیں. اور بابا مدھوبن میں کوئی دھرم شالا تو نہیں کھلی ہوئی ہے بتی مارگ کی؟ لیکن اس مدھوبن میں بنا بٹھی کی ہوئی آتمائیں رہنے کے لیے آ جاتی ہے. تو جو بھی آتمائیں آتی ہیں کورس کے لیے ان کو لانے والے مدھوبن میں پکا کر کے نہیں لاتے ہیں. ان کو پوچھیں گے تو کہیں گے ہم بھگوان کے درشن کے لیے آئے ہیں, بھگوان کا گھر دیکھنے کے لیے آئے ہیں. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو بتاؤ, یہ تو گھر پریوار ہے, بےد کا باپ آیا ہوا ہے, بےد کے باپ کا بےد کا پریوار ہے. پریوار میں کوئی دھرمشالا بنائی جاتی ہے کیا؟ پریوار میں باپ کے بچے ہوتے ہیں اور بچے تو باپ کے تب ہی بنتے ہیں جب نو مہینے گرب میں بھٹی میں پکتے ہیں. یہاں بھی بے حد کی بھٹی ہے نو دنوں کی. آتما پرانی دنیا سے موہ ممتا تیاگ کر विश्वास पैदा करने के लिए या विश्वास पैदा करके बाप के घर में जाकर के जन्म लेती है। नौ दिन भट्टी में पकती है, एक दिन आना एक दिन जाना, सात दिन बीच में। तो बच्चा बनकर पैदा होती है, जब तक बाप का बच्चा बना नहीं तब तक बाप के घर में रहने का अधिकारी नहीं। ऐसे समझाओ। चावल नहीं खा पाती, तो खिचड़ी कैसे खाएं? कोई डॉक्टर ने खिचड़ी खाने के लिए मना किया क्या?
नहीं, अंत में तो बोल,
कोई डॉक्टर ने मना किया क्या? डॉक्टर तो कहते हैं भुना हुआ आलू एकदम मरीज मरता हुआ उसको भी दे दो, खिचड़ी कोई भी मरीज हो उसको नुकसान नहीं करेगी। खिचड़ी चावल ठंडा होता है और दाल मिलाने के बाद वो खिचड़ी गर्म हो जाती है, वो खिचड़ी नुकसान नहीं करती है। और सवेरे को जल्दी उठाए देगी, पेट जल्दी खाली हो जाएगा, अमृत वेला सुहाना होगा, पेट खराब नहीं होगा।
चावल
दुनिया तो चावल कहाँ खिचड़ी की बात है,
चावल भी तो
एक दिन के लिए। अब इतनी ढेर के ढेर लोग आते हैं उनके लिए रोटी जपी जाएगी क्या? या तो आ जाओ पहले से सवेरे से 7 बजे से कन्या करो है, मना कौन करता है रोटी बनाने के लिए? करना धरना कुछ नहीं, बातें बहुत बना। अरे महीने में अगर एक दिन चावल खा लिया तो एक दिन में पेट खराब हो जाएगा? अरे यहाँ की यादगार देखो, जगन्नाथ में क्या बनता है, श्रीनाथ भंडारे में तो श्री तो थोड़े होते हैं, देवताएं होते हैं थोड़े, और जगन्नाथ भंडारे में तो सारे जगत को भंडारा मिलेगा। अकाल पड़ेगा तो बड़ा लंगर लगेगा, सबको मिलेगा। जिंदा रहेंगे तो भगवान को भी याद करेंगे। खाने का हक तो, पेट भरने का हक तो सभी बच्चों को है, तो क्या उनके लिए रोटियां जपोगे? तो फाउंडेशन कहाँ डालना है? यहाँ फाउंडेशन पड़ रहा है। अब शिकायत करते हैं बैठ के, चावल कैसे खाएं? अरे
नहीं, कोई कोई माताओं ने बताया है कि यूपी वाली माता चावल नहीं शुरू करते हैं, तो बताओ कैसे सेवा में जाए, क्या करें?
अरे महीने में एक दिन चावल थोड़े कम खाओ ना, पेट भर के क्यों खा लेते हैं? थोड़ी चीज खाई जाएगी तो वो पच जाएगी, नुकसान नहीं कर सकती। और भगवान के आया बड़ी भारी मुसीबत आ गई, अकाल पड़ेगा तब देखेंगे चावल खाते हैं कि क्या खाते हैं। है
शरीर जो भी पूरी है सोने के कारण आत्मा को पुरुष कहा गया, लेकिन स्त्री को कहा जाता
है।
शरीर जो भी पूरी में आत्मा शैल चलती, इसलिए पुरुष कहा जाता है। स्त्री कैसे कहा जाता है? स्त्री चोला क्या नहीं सहन करती आत्मा उसमें? क्या उसमें आत्मा स्त्री चोले में सहन नहीं करती?
सहन भाव होता है, देह की भावना ज्यादा होती है। देह का होना माताओं में कन्याओं में ज्यादा होता है या पुरुषों में ज्यादा होता है? पुरुषों में ज्यादा होता है, उनकी खोपड़ी। अरे पुरुष तो बिना लंगोट लगाए भी इधर उधर घूमते रहते हैं, सन्यासी बनते हैं, कपड़े भी नहीं पहनते, और स्त्रियां ऐसा कर पाएंगी? फिर स्त्री शरीर की लज्जा रखनी होती है, पुरुष तो निर्लज्ज होते हैं। और
बात प्रवेश
करके
और तो कर्तव्य करते हैं, है कर्तव्य करके प्रवेश करके और उत्तर भारत में नारायण मंदिर है, उत्तर भारत में नारायण मंदिर है, दक्षिण भारत में नाथ है और ना बाबा नाथ है, और जगन्नाथ और
है। ये सब अलग अलग होते हैं कि एक ही होता है? ये सब जितने गिना दिए वो सब अवतार अलग अलग होते हैं या एक ही होता है?
हाँ एक ही
है,
एक ही है। लेकिन जो कलम के अवतार होता है किस मंदिर से यादगार होती है, और जो कलम के अवतार में माता का साथ है वो किस माता का साथ
है?
कलम के अवतार में किस माता का साथ है?
किस माता का साथ है?
माता साथ में रहती कलम के अवतार,
जो कलंक लगाए जाते हैं वो तो एक ही भगवान है जिसको कलंक लगाए जाते हैं। वो ही कलंकी अवतार है और वो ही आदि पुरुष कहा जाता है।
माता कौन साथ में रहती है ऐसे पुरुष रहते?
ये तो आप पूछने वाले, आप बताइए ना। भक्ति मार्ग में तो कहां क्या कहां क्या कहां क्या 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 दिखा दिया।
है
वो तो कहते हैं कि कलंकी अवतार होगा तो काले घोड़े पर तलवार लेकर के आएगा, अब आधार किसका लिया है? है? उसकी सवारी किसकी दिखाई गई? घोड़ा सवारी दिखाई गई? बाप भी तो मुरली में कहते हैं, त्रिमूर्ति में एक घोड़ा है, एक बकरी है और एक शेर है। तो काला घोड़ा दिखाया जाता है, वो काला घोड़ा कौन हुआ? ब्रह्मा माता हो गई। और
नेवाड़ी में कब
नेवाड़ी में क्या हुआ?
नेवाड़ी में आओ ना आप।
नेवाड़ी में आए नहीं, पहले आए थे फिर बाद में आ जाएंगे, जो आज में सो अंत में।
पाठशाला क्या है नेवाड़ी में?
है
पाठशाला,
पाठशाला जहाँ होती है वहीं तो जाते हैं, दूसरे ही जाते हैं क्या? नई बाड़ी है तो नई नई गीता पाठशाला ही खुलती होंगी। क्या आगा पीछा नहीं है कुछ प्रश्न का? और
संगम में अभी कुछ एक व्यक्ति से यात्रा में उनकी हिस्ट्री लंबी जाती है और संगम की यात्रा जो है हिस्ट्री अभी संगम में काफी ज्यादा है और सतीजों का
क्या ज्यादा है
मतलब हिस्ट्री जो है ऐसा लगा कि हिस्ट्री काफी लिख जाएगा इस सतीजों का देवता का जो इतिहास जो है सतीजों का देवता जिसमें हमारे 21 जन्म का वर्षा मिलता है हमें 21 जन्मों का वर्षा मिलता है ना वहाँ पर तो उसका कोई इतिहास नहीं है यादगार नहीं इतिहास
यादगार नहीं है यादगार नहीं है
तो
वो यादगार संगम यादगार जो है वो संगम की बनती है या सत्युग त्रेता की बननी चाहिए तो संगम की है जब बाप आते हैं तो उसकी यादगार भी बनती है बाप की दुनिया याद भी करती है यादगार त्योहार शास्त्र वगैरह जो भी बने हैं वो कहाँ की यादगार है संगम की यादगार है सत्युग त्रेता की तो कोई हिस्ट्री मनुष्यों के पास नहीं है क्योंकि वहां तो सुख की दुनिया है सुख की दुनिया को कोई याद करता है या दुख में होते हैं तब याद आता है दुख में होते हैं तब याद आता है दुख में टाइम लंबा हो जाता है तो टाइम की गिनती करते हैं एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन महीना दो महीना वर्ष दो वर्ष सौ वर्ष हजार वर्ष वहां तो सुख की दुनिया है वहां कोई याद कर, याद रखने की दरकार ही नहीं
वो किस रूप में
पल छिन मास दवा जमाने बीते वहां टाइम बीतता चला जाता है पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया सुख में टाइम जल्दी जल्दी बीत जाता है या दुख में जल्दी बीतता है, है? सुख में जल्दी बीतता है ये इस दुनिया की बात हो गई और जहाँ सुख ही सुख है कभी नाम मात्र दुख नहीं होता तो वहां तो कितना अच्छा होगा माहौल कि बीते हुए को कोई याद ही नहीं करेगा और भविष्य में क्या होगा इसकी कोई चिंता करेगा ही नहीं तो उसकी हिस्ट्री कौन बनाएगा हिस्ट्री बनाने की बात ही नहीं वो हिस्ट्री बाप ही आकर के बताते हैं सत्युग त्रेता की इसलिए सब मुगालते में है मुगालते में होने के कारण ही कहते हैं स्वर्ग ऊपर है नरक पाताल में है ये जानते ही नहीं हम नरक में ही बैठे हुए हैं है और
आत्मा के दो बाप होते हैं
है? आत्मा के दो बाप होते हैं हाँ एक देहधारी बाप बेहद का एक निराकारी बाप बेहद का दोनों बेहद के बाप हैं लेकिन एक लौकिक है और एक पारलौकिक है और बाबा बाबा के युगल बच्चे गीता पाठशाला खोल कर बैठते हैं और अपनी गीता पाठशाला का हिसाब किताब ऊपर भी देते नहीं है। बाबा की मुरली समाप्त होने के बाद इधर उधर की बातें बोलते रहते हैं, सुनाते हैं। इससे गीता पाठशाला का वाइब्रेशन खराब होता है। तो बाबा हम तो घर में वाणी सुनते हैं, तो घर में सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए? बोलो भैया, हाथ झाड़ के हम तो बैठ गए। घर जाए भट्टी में बाबा की गीता पाठशाला, अरे बाबा को कम से कम शिकायत ही कर दो है? फिर बाबा जाने बाबा का काम जाने, और कोई अपनी इधर उधर की बातें सुनाता है। सुनना न सुनना हमारे कान की बात है या दूसरे के कान की बात है? हम चाहें तो सुने, न चाहें तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दे। कोई अपनी मनमत सुनाता है, हम चाहें तो सुने, न चाहे तो न सुने। बाकी बाबा की गीता पाठशाला है, तुमको गीता पाठशाला छोड़ देने के लिए तो नहीं बोला गया? लौकिक परिवार को बेसिक ज्ञान में आने के बाद छोड़ दिया था क्या? परिवार में ऊपर नीचे बातें तो होती रहती हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो हाथ झाड़ के अलग बैठ जाते हैं क्या? है नहीं बैठते? यहां तो भगवान बाप का परिवार है, हमारी भी जिम्मेवारी है, हमारा भी परिवार है। बाप हमारा तो परिवार भी हमारा, फिर हमारी भी जिम्मेवारी आ जाती है। वाइब्रेशन अगर कोई बिगाड़ता है तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है सुधारना। बिगाड़ने वाला बिगाड़ने का ये वजह लेगा, और सुधारने वाला सुधारने का ये वजह लेगा। बाबा के पास तो एक एक पैसे का हिसाब किताब है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। और
जिनका नाक खोला नाक है, नाक कैसे हुई? बोला चाहेगा दिन तो रात कैसे हुई?
बोला चाहेगा
दिन दिन रात कैसे हुई?
होगी नहीं?
हाँ,
जाने
का दिन
रात
कैसे होगा?
नहीं होगी।
है
तो इतना निश्चय भी तो चाहिए, निश्चय बुद्धि भी जाते। और
राधे
कृष्ण का क्या होता
है?
इक्कीस जन्मों में से पहला जन्म कब शुरू होगा? राधे कृष्ण का माने ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्मा का पहला स्थूल जन्म कब होगा ये पूछते है? 2036 के बाद,
2018 या 2036?
अरे 18 में सतयुग का कृष्ण का जन्म होगा, यह संगमयुगी कृष्ण की बात है जो शास्त्रों में गायन है। शास्त्रों में कौन से कृष्ण का गायन है? संगमयुगी कृष्ण का गायन है या सतयुग के कृष्ण का गायन है?
पृथ्वी राज बनेंगे
है?
पृथ्वी राज आदि
अरे जो राधे कृष्ण बनेंगे लक्ष्मी नारायण, उनकी पूजा नहीं होती है। उन सात आठ लक्ष्मी नारायण जो सत्युग में बनेंगे उनकी पूजा होती है क्या? आठ लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है क्या? होती है? होती नहीं। उनका कोई गायन नहीं, उनके चित्र नहीं पूजे जाते। और